मधोक्षजहां विराजम अदपत्स्वेन तेजसहसाम निवृत्तये। अब मैत्री जी कहते हैं, अब तुम मुझसे ये सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूपों में विराट किया। अथ तस्याभि तत्तस्य कतिधायतनानि हां निर्विद्यन्ते देवानां तानि मे गजता श्रणु। अब देखिए कैसे देवता जो है ना उनके शरीर से उत्पन्न हुए, उनके मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ। और भौतिक कार्य संभालने वाले जितने निदेशक हैं अपने अपने पदों के अनुसार उसमें प्रविष्ट हुए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। अग्नि है ना, अग्नि जो है जो देवता हैं वो पैदा हुए और उसी से ही शब्द निकलते हैं जीव के मुख से। तस्याग्निराश्यम निर्भिन्नम लोकपालो विशत्पदम वाचा स्वान्ते न वक्तव्यम या सौ प्रतिपद्यते। इसलिए आग की आवश्यकता है, नहीं तो आवाज बैठ जाती है तो फिर आपको गले की सिकाई करनी पड़ती है, नमक के गर्म पानी के गरारे करने पड़ते हैं, आग की जरूरत है यहाँ पर। इसलिए जब विराट रूप का तालु प्रकट हुआ तो लोकों में वायु का निदेशक वरुण उसमें प्रविष्ट हुए, जिससे जीव को अपने जीव से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त है। निर्भिन्नम तालु वरुण लोकपालो विषंधरे से न चरसम या सौ प्रतिपद्यते। तो वरुण देवता भगवान के तालु से प्रकट हुए, अग्नि देवता मुख से उत्पन्न हुए, वरुण देवता उनके तालु से उत्पन्न हुए। जब भगवान के दो नथुने प्रकट हुए तो दोनों अश्विनी कुमार उनके भीतर अपने अपने पदों में प्रवेश कर गए। इसके फलस्वरूप जीव हर वस्तु की गंध सूंघ सकते हैं। निर्भिन्ने अश्विनो नाशय विष्णोरा विशताम पदम घ्राणे नाम शयन गंधस्य प्रतिपत्तिर यतो भवे। इसके बाद भगवान की विराट रूप की तो आंखें निकली, प्रकाश के निदेशक सूर्य उनमें प्रविष्ट हुए, जिसे जीवों के रूपों को देखा जा सकता है। तो सूर्य देवता के कारण नेत्र हैं, देखते हैं। निर्भिन्न अक्षणी त्वस्ताम लोकपालो विसंदिभो चक्षुषां सेन रूपाणाम प्रतिपत्तिर यतो भवे। जब विराट रूप से त्वचा प्रकट हुई तो वायु के निदेशक देवता अनिल प्रविष्ट हुए, जिसे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं वायु के द्वारा। निर्भिन्नान्यस्य चरमाणि लोकपालो निलो विशन प्राणेनां सेन संपर्शम येना सौ प्रतिपद्यते। जब विराट रूप के कान प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्वों समेत उसमें प्रविष्ट हो गए, जिसे सारे जीव सुनते हैं और ध्वनि का लाभ उठाते हैं। तो यहाँ दिशाओं के देवता उत्पन्न हुए भगवान के काम से। कर्णावश्य निर्भिन्न दिश्यम स्वम विविशुर दिशाम श्रोत्रेणाम सेन शब्दस्य सिद्धिम येन प्रपद्यते। जब त्वचा प्रकट हुई तो अपने विविध अंशों समेत उसके नियंत्रक देवता उसमें प्रविष्ट हुए, इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण खुशलाहट का अनुभव होता है। त्वचमस्य निर्भिन्नाम विविशुर दिश्यम औषधि अंशेन रोम भी कंडुम ये रसो प्रतिपद्यते। जब विराट रूप के जननांग पृथक हुए तो आदि प्राणी प्रजापति उनमें पृष्ठ हुए, इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव कर सकते हैं। मेढ्रम तस्य विनिर्भिन्नम सदृश्यम का उपाविश रेत सांसन ये नासा वानंदम प्रतिपद्यते। फिर विसर्जन मार्ग प्रकट हुआ मित्र नामक जो देवता हैं वो अपने अंगों समेत प्रविष्ट हुए। इस प्रकार जीव अपना मल मूत्र विसर्जित कर पाता है। गुदम पुंसो अभिनिर्भिन्नम मित्रो लोके से आविशन पायुनाम से ना सौ विसर्गम प्रतिपद्यते। जब विराट रूप के हाथ प्रकट हुए तो स्वर्ग लोक के शासक इंद्र उसमें प्रविष्ट हुए। इस तरह से जीव अपनी जीविका के लिए व्यापार चलाता है हाथों से। हस्तावस्थ विनिर्भिन्ना विन्द्रा स्वरपतिरा विषम वार्त ज्ञान से न पुरुषो यावृत्तिम प्रपद्यते। फिर विराट रूप के पांव प्रकट हुए और विष्णु नामक देवता, वो भगवान नहीं है, वो विष्णु नामक एक दूसरे देवता हैं, उनमें गति के साथ उन्होंने प्रवेश किया। इससे जीव को जाने में सहायता मिलती है। पादावस्थ विनिर्भिन्नो लोकेशो विष्णुरा विषम गत्या स्वाम से न पुरुषो या प्राप्यम प्रपद्यते। अब विराट पुरुष की बुद्धि प्रकट हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ प्रविष्ट हुए। इस तरह जीवों को बुद्धि की विषय का अनुभव होता है। बुद्धिम चास्य विनिर्भिन्नाम वागीशो धिष्णुमा विषम बोधेनाम से न बोधव्यम प्रतिपत्तिर्यतो भवे। इसके बाद विराट रूप का हृदय प्रकट हुआ और इसमें चंद्र देवता अपनी मानसिक क्रिया समेत प्रवेश करते हैं। इस तरह जीव मानसिक चिंतन कर सकता है। मन प्रकट हुआ, उसके देवता चंद्रमा। हृदय चास निर्भिन्नम चंद्रमा धिष्णुमा विशन मनसां सेन ये नासो विक्रियां प्रतिपद्यते। फिर विराट रूप का अहंकार प्रकट हुआ तो उसके नियंत्रक रुद्र है, उसमें प्रवेश करते हैं, जिसे जीव अपना कर्तव्य पूरा करता है। आत्मानम चास निर्भिन्नम अभिमानो विशत पदम कर्मणां सेन ये नासो कर्तव्यम प्रतिपद्यते। इसके बाद विराट रूप से उनकी चेतना प्रकट हुई तो उसमें चेतन अंग समेत वो जो देवता हैं वो प्रविष्ट हुए। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को धारण करने में समर्थ होता है चेतना के द्वारा। सत्वम चास्य विनिर्भिन्नम महां धिष्ण्यम उपाविशन चित्तेनाम सेन ये नासौ विज्ञानम प्रतिपद्यते। अच्छा, फिर विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक प्रकट हुआ और पैरों से पृथ्वी प्रकट हुई और नाभि से आकाश प्रकट हुआ। आकाश जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में है, इनके भीतर प्रकृति के तीन गुणों के रूप में देवता भी प्रकट हुए। शीर्षणोश्च द्योर्धरा पद्भ्याम खमनाभेरुदपद्यते गुणानां मृत्ययो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः। देवतागण सतोगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्ग लोक में स्थित हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण पृथ्वी में रहते हैं। आचन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धरामृजः स्वभावेन पणयो ये चाताननु। जो जीव रुद्र के संगी हैं वे प्रकृति के तीसरे गुण में विकास करते हैं। प्रकृति का तीसरा गुण तमोगुण है। वे पृथ्वी लोकों और स्वर्ग लोक के बीच आकाश में स्थित होते हैं। तारतीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रितः अभ्योरंतरम व्योमं ये रुद्र पार्षदहं गणाम। तो हे विदुर, मैत्री जी कह रहे हैं, हे विदुर, विराट के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। अब ये जो विस्तार से मैं बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, तो अर्जुन ने कहा है कि आपके शरीर में मैं देवताओं को देख रहा हूं, तो इसलिए विस्तार से मैं बता रहा हूं कि श्रीमद् भागवत में कितना विस्तार है, भगवान के शरीर में विभिन्न देवता कौन कहां पर स्थित हैं। तो विराट के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ये सभी वर्णों के शिक्षक और गुरु होते हैं ब्राह्मण। मुकुतो वर्तते ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वहम् यस्तोन्मुखत्वान् वर्णानां मुख्योभूत ब्राह्मणो गुरु। विराट पुरुष की भुजाओं से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उचकों के उत्पातों से रक्षा करने के लिए क्षत्रिय भी उत्पन्न हुई। तो ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए और क्षत्रिय कहां से उत्पन्न हुए? भुजाओं से उत्पन्न हुए क्षत्रिय रक्षा करने के लिए। बाहुभ्यो वर्तते छत्रम क्षत्रिय सदनो मृतः यो जातस्त्रायते वर्णान पौरुषा कंटक छतात्। फिर भगवान की जांघों से क्या उत्पन्न हुए? समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अन्न का उत्पादन और प्रजा में उसका वितरण ये भगवान के जंघा से उत्पन्न हुए। तो ये व्यापारी जो इस कार्य को संभालते हैं वैसे कहलाते हैं। जो वैसे हैं वो भगवान के कहां से पैदा हुए? जंघा से पैदा हुए। विश्ववर्तन तथोर वोर लोक वृत्ति करीर विभो वैश्य संभवो वार्ताम नाम यहां समय वर्तयन। फिर भगवान के पैरों से क्या हुआ? धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। तो चरणों से क्या उत्पन्न हुए भगवान के? शूद्र। पद्भ्याम भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्याम जाता पुरा शूद्रो यन्मृत्या तुष्यते हरिहि। ये भिन्न भिन्न जो वर्ण है ये भगवान से उत्पन्न हुए हैं। इस तरह अवध जीवन और आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देश के अनुसार भगवान की पूजा करनी होती है। एते वर्णा सुधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मे विशुद्ध्यर्थं यज्जाता सह वृत्तिभिः। हे विदुर, भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल कर्म और शक्ति को भला कौन माप सकता है? कौन अनुमान लगा सकता है? ये तत्छत्तर भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः का श्रद्धा उपाकर तुम योग्य माया बलोदयम्। अपनी असमर्थता के बावजूद में जो कुछ सुन सका हूं और जितना समझ सका हूं उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूं, अन्यथा मेरी वाणी अपवित्र बनी रहेगी। नेते जी कहते हैं जितना मैंने अपने गुरु के मुख से सुना है मैं बता रहा हूं, अगर नहीं बताऊंगा तो क्या होगा? मेरी वाणी अशुद्ध ही बनी रहेगी, मेरी वाणी शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए तथापि कीर्तयाम यंग यथा मति यथा श्रुतम कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरम अन्याभिधा सती। मानवता का सर्वोच्च लाभ क्या है? भगवान के कार्यकलापों और महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना। ऐसे कार्य महान विद्वान ऋषियों द्वारा बड़ी सुंदरता से लिखे गए हैं और काम का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। एकांत लाभम वचसो अनुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुण वाद माहु श्रुते सभी द्वंद्वी रूप कृतायाम कथा सुधायाम उपैसम प्रयोगम। तो आदि कवि ब्रह्मा 1000 दिव्य वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। ब्रह्मा जी ने 1000 साल दिव्य वर्षों तक तपस्या की, ध्यान किया पता वो क्या जान पाए, क्या जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है, बाहर नहीं उसका। ये भी ज्ञान उनको हुआ इतना समय के बाद, ये ज्ञान हुआ कि भगवान की महिमा का कोई पार नहीं है। हजार देवी वर्षों तक, हजार देवी वर्ष मतलब 360 का गुणा करो हजार में, है? नहीं 360,000 साल, हाँ 360 से गुणा करेंगे हजार में, 360,000 साल तक परिपक्व ध्यान करके उनको क्या पता चला, इतने ही पता चला कि भगवान की महिमा अपार है, कोई पार नहीं है। आत्मनोवशितोवत्स महिमा कविना दिनाम संवत्सर सहस्रांते धिया योगे विपक्वयम्। भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। यहां तक कि भगवान की शक्ति भगवान तक को पता नहीं है, हाँ फिर दूसरों के लिए क्या पता होगी, दूसरे को जान सकते, भगवान तक नहीं जानते उनकी शक्ति। अतो भगवत ओ माया माई नाम अपि मोहिनी यत स्वयं चातमर्त्मात्मा वेद किमता परे। अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द मन और अहंकार भगवान को जानने में असफल रहे हैं। शब्द भी चाहे कितना भी बोलो भगवान का अंत नहीं है, और मन भी कितना चिंतन करो भगवान का अंत नहीं है। अतः हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना चाहिए। इसलिए ज्यादा अच्छा यही है कि भगवान को नमस्कार करो। ये तो प्राप्य निवर्तन्ते वाचश्चा मनसा सहम अहम चान्य एवे देवा तस्मै भगवते नमः। तो इस तरह से हमने आपको कुछ बातें बताई भगवान के विराट रूप की महिमा की, और जो है विभिन्न देवता उनके अंगों में कैसे स्थित हैं, कैसे भगवान के आश्रित हैं देवता, स्वतंत्र नहीं है भगवान से, ये बातें हमने चर्चा की। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी धन्यवाद। इनका प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न यह है कि अभी हमने जो पढ़ा है तो उससे पता चलता है कि कोई ऐसा समय था जब प्राणी कोई नहीं थे और भगवान अकेले थे और भगवान ने फिर उनको उत्पन्न किया, जबकि गीता में प्रारंभिक शिक्षा है न ते माहम जातु नासम न तुम नहीं मे जनाधिपा, कि कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था या तू नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा कभी होगा कि हम सब लोग नहीं रहेंगे। तो वास्तव में भगवद गीता का ये श्लोक जो है ना, सब ज्ञान का आधार है, संपूर्ण ज्ञान जो है इस पर आधारित है। आगे जितना भी ज्ञान है सब इसी से ही फिर आगे बढ़ते हैं। ये बात अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए, है ना। और फिर भगवान ने कई श्लोकों में आगे यही बताया है, है ना, कि ये पैदा नहीं होता है, जन्म नहीं होता है, न जायते मृते वा कदाचन, पैदा नहीं होता है, मरता नहीं है, है ना। तो भगवान बहुत श्लोकों में बताते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब बताया गया है कि वो नहीं थे प्राणी, भगवान ने उत्पन्न किया, तो वास्तव में वो मतलब क्या है, वो उत्पन्न ऐसे उत्पन्न नहीं है, मतलब वो सुप्त अवस्था में है, जितने प्राणी हैं सुप्त अवस्था में है और उनको भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होते हैं, तो भगवान बहिरंग शक्ति पर दृष्टि डालते हैं, अपनी दृष्टि के द्वारा ही जितने जीव आत्मा हैं वो उसके गर्भ में डाल देते हैं, बहिरंग शक्ति के गर्भ में डाल देते हैं ना। और फिर जो भौतिक प्रकृति है विभिन्न तत्वों को उत्पन्न करती है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश उत्पन्न करती है, फिर शरीर बनते हैं, फिर जीवों को विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, भौतिक शरीर प्राप्त होते हैं, और फिर से पिछले जो सृष्टि के उनके कर्म हैं उनके अनुसार फिर वो अपना शरीर प्राप्त करते हैं और आगे कर्म फल भोगते हैं और नए कर्म करते हैं, इस तरह चलता रहता है, ये कर्म का जो चक्र है ये बंद नहीं होता। जब प्रलय होती है और ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, उसके बाद फिर ब्रह्मा जी की रात्रि होती है,
और फिर ब्रह्मा का दिन जब शुरू होता है तो प्राणियों को फिर अपने कर्म के अनुसार, पिछले कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं और फिर वे अपने कर्म के अनुसार आप जो है भोगते हैं, उनको फिर शरीर मिलता है और फिर ब्रह्मा जी की आयु जब समाप्त होती है उस समय महाप्रलय होती है। तो आप लोग जानते हैं ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है, 31,10,40,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, तो फिर महाप्रलय होती है, सब प्राणियों के शरीर फिर नष्ट हो जाते हैं और जो प्रकृति के तत्व हैं वो प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और फिर इतनी बड़ी आयु यानी इतनी बड़ी अवधि तक जो है महाविष्णु के शरीर में सब जीव सुप्त अवस्था में रहते हैं, उनके पास शरीर नहीं होता है। और फिर से महाविष्णु के श्वास से जब ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और फिर उस ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा पैदा होते हैं, फिर प्राणियों को शरीर प्राप्त होते हैं, तो वो जो कर्म उनके पहले से जो थे उनके अनुसार फिर उनको शरीर प्राप्त होता है। और इस प्रकार से कर्म चक्र चलता रहता है। अब श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने जो है भगवान की जो स्तुति की है उसको हम पढ़ के सुनाएंगे, क्योंकि आज के श्लोक में अर्जुन भगवान के विश्व रूप में देख रहे हैं। क्या ब्रह्मा नमीसम कमलासनस्थम, जो ब्रह्मा जी हैं कमल के आसन पर विराजमान हैं। तो अब हम ये पढ़ के सुनाएंगे कि कमल के आसन पर जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो उन्होंने किस प्रकार से भगवान की स्तुति की। जिस समय ब्रह्मा जी कमल के आसन पर उत्पन्न हुए तो वे नहीं जानते थे कि वे कौन हैं और कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, किसने उन्हें उत्पन्न किया है, किस लिए उत्पन्न किया है, तो बहुत परेशान थे। फिर पानी में दो बार तप तप ये शब्द हुआ और ब्रह्मा जी को ये लगा कि उन्हें तपस्या करनी चाहिए अगर वे जानना चाहते हैं। तो जब 10,000 साल तक उन्होंने तपस्या की तो फिर भगवान जो है उन्हें दर्शन देते हैं और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान के सामने भगवान की स्तुति की। तो ये श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का नवा अध्याय है जिसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, आज अनेक अनेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपको जान पाया हूँ। ओहो, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप ही एकमात्र जानने योग्य हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु श्रेष्ठ प्रतीत होती है तो वह श्रेष्ठ नहीं है, आप पदार्थ की शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान हैं। ज्ञातोऽस्ति मे सुचिरान् ननु देह भाजम् न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुण व्यतिकरात् यदुर्विभासी। मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वह भौतिक कलुष से सर्वथा मुक्त है और अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। ये अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से उगे कमल के फूल से उत्पन्न हुआ हूँ। रूपम यते तव बोध रसोदयेन सत्सन्निवृत्त तम सहा सदनुग्रहाय आदो गृहीत ममतार सते के बीजम यन्नाभिपन्न भवनात् अहम विरासम। हे प्रभु, मैं आपके सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। वैकुंठ में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में ना तो यदा कदा परिवर्तन होता है और न अंतरंग शक्ति में कोई कमी आती है। मैं आपके शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि जहाँ मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ वहीं आप विराट जगत के कारण होते हुए भी पदार्थ के द्वारा स्पर्श नहीं होता। नातः परम परम यन भवता स्वरूपम आनंद मात्रम विकल्प अविद्य वर्च पश्यामि विश्व सृजमे किम विश्वमात्मन भूतेन्द्रियात्म के मदस्त उपास्त्रितोस्मी।
तात्पर्य में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने इसी प्रकार से स्तुति की है ब्रह्म संहिता में भी कि मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत तथा अच्युत हैं, यद्यपि भी अनेक अनेक रूपों में विस्तार करते हैं किंतु वे समस्त कारणों के अधिकारण हैं। यद्यपि वे सबसे पुराने व्यक्ति हैं किंतु वृद्धावस्था से अप्रभावित रहते हुए वे सदैव तरुण रहते हैं। भगवान को वेदों के किताबी ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, उन्हें समझने के लिए भगवत भक्त के पास जाना पड़ता है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि।
भगवान कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए मंगलमय होता है, क्योंकि आपने नित्य साकार रूप प्रकट किया है जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ।
कौन कह रहा है?
ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जिन्हें नरक गामी होना बड़ा है वे आपके रूप की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों का मनन करते रहते हैं।
तन्वा इदम भुवन मंगल मंगलाय ध्यानेस्मिन् दर्शितम् स उपासकानाम् तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यम् यो नादृतो नरक भांग भीरसन प्रसंग।
तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक श्लोक ब्रह्म संहिता का भी इसी से पुष्ट कर रहे हैं। भगवान अपना विस्तार उसी तरह करते हैं जिस तरह अग्नि की लपटें एक दूसरे के बात करती हैं। यद्यपि आदि अग्नि श्री कृष्ण को परम पुरुष गोविंद के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु राम नरसिंह तथा वराह जैसे अन्य सारे अवतार भी आदि भगवान के ही समान शक्तिशाली होते हैं।
दीपार्चिते विहे दशांतरम अभ्युतेते दीपायते विवृते हेतु समान धर्मम यस्तात्र गेवि च विष्णुतया विभाति गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजम।
आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाए गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं, जो वेद वाणी है वो क्या है? हवा के समान है, आपके चरणों की गंध को ले आती है, और कान आपके भक्तों के कान है वो सूंघने वाले हैं उस सुगंध को। उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी विलग नहीं होते, कानों के द्वारा आप प्रवेश करते हैं, हृदय में आ जाते हैं।
ये त्वदीय चरणाम्बुजकोश गंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवरय श्रुतिवात नीतम भक्त्या गृहीत चरणम पर्याच तेषाम नापेसिनात हृदयाम्बुरुभात स्वपुंसाम।
हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं, वे सदैव भयभीत रहते हैं, वे सदैव धन शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, वे शोक और अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से पूरित रहते हैं, और लोभ के कारण मैं और मेरे की धारणा पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों के शरण ग्रहण नहीं करते तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं।
तावन भयम द्रविण देह सुहिन निमित्तम शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन् ममेत्य सद्वग्रह आर्तिमूलम यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयम् प्रवृणीत लोकः।
हे प्रभु,
वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में कीर्तन तथा श्रवण करने से दूर हैं, निश्चित रूप से अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। वे तनिक देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के लिए अपने को अशुभ कर्मों में लगाते हैं। दैवे नते हत धियो भवता प्रसंगा सर्वाशुभोप समनाथ विमुखे इंद्रिया ये कुर्वन्ति काम सुख लेश लवाय दीनाम लोभाविभूत मनसो कुशलानि सस्वन। हे महान अभिनेता, हे मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख प्यास शीत कफ और पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा और अन्य अनेक क्षुब्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल कामेच्छाओं और दुस्सह क्रोध से भरे रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए बहुत संतप्त रहता हूँ। क्षुत्र धातु भीरिमान मुहुर्द्यमान शीतोष्ण वात वर्ष वितरेतराच कामाग्निना चतुरुषा चशुधुर भरेण संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते में। तत्पर में प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा जैसे उनके शिष्य परंपरा के अन्य शुद्ध भक्त उन बद्ध जीवों की चिंताओं को देखकर सदैव दुखी रहते हैं जो शरीर तथा मन भौतिक प्रकृति के उत्पातों से संबंधित तीन प्रकार के तापों के प्रहारों को सहते हैं। ऐसी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के पर्याप्त उपाय न जानने से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी अपने को लोगों का नेता बताते हैं और अभागी अनुयायी ऐसी तथाकथित नेतागिरी से और भी हानि उठाते हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, फिर भी जब तक बद्ध आत्मा शरीर को इंद्रिय भोग के लिए देखता है तब तक वह आपके बहिरंग शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के बंधन से बाहर नहीं निकल पाता। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मनं इन्द्रियार्थ माया बलं भगवतो जन ईश पश्येन् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःख निवहं वहती क्रियार्थ। इस प्रकार से हमने जो ब्रह्मा जी की प्रार्थना है आपको सुनाई है और भी आगे विस्तार से है। इस समय अब कम है। धन्यवाद।